Шилэл. Шилэл. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर एशियाई और ट्रांसकल्चरल अध्ययन संस्थान विल्नियस विश्वविद्यालय लिटुआनिया से आई है डॉक्टर क्रिस्टीना दुलिनिना जी। विश्व हिंदी सचिवालय में 10 जनवरी को हिंदी दिवस के अवसर पर आप बीज वक्ता के रूप में आई हैं। डॉक्टर जी नमस्ते।
प्रणाम जी।
स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
कार्यशाला का लक्ष्य है द्वितीय एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का परिचय देने की प्रक्रिया का रेखांकन करना। कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए।
हाँ जी, तो सबसे पहले ये बोलना ज़रूरी है कि हमारे लिथुआनिया में, हमारे विश्वविद्यालय में जो छात्र हिंदी सीखते हैं, ये बच्चे तो नहीं है, एडल्ट्स है ना। तो वो आते स्कूल, मतलब विद्यालय को फिनिश करने के बाद ही विश्वविद्यालय आते हैं। और अगर उनको एजीआई अध्ययन में बीए करना होता है, तब उनको हिंदी भी सीखना अनिवार्य होता है। तो पहले सेमेस्टर में उनको संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसके दौरान, पहले सेमेस्टर के दौरान उनको देवनागरी जो लिपि है उनसे पहचान हो जाता है, और जो इंडो आर्यन भाषाओं का जो इतिहास है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हिंदी कहाँ कहाँ से, मतलब संस्कृत क्या भाषा है, कहाँ से आता है, क्योंकि लिथुआनियन भी एक इंडो आर्यन भाषा है। वो एक परिवार से है जो बोल्टिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसको बोल्टिक भाषाएं, और इस परिवार में सिर्फ दो भाषाएं हैं, लिथुआनियाई और लातवियन, दो भाषाएं। पहले और तीसरी भाषा भी थी प्रशियन, लेकिन वो अभी नष्ट हो गई, वो रही नहीं। रशियन नहीं, प्रशियन।
प्रशियन,
प्रशियन, रशियन जो भाषा है वो स्लावोनिक लैंग्वेज के परिवार में है, थोड़ा अलग है। अभी तो मैं बोल सकती हूँ, रशियन में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं, मेरी पढ़ाई भी उसमें हुई थी, और मेरे पापा रशियन है, तो मेरे लिए ये, लेकिन ज़्यादा लिथुआनियन लोग रशियन नहीं बोलते, लिथुआनियन एक अलग से, अलग सी भाषा है। तो उनको ये, इसमें पहचान हो जाता है कि साहित्य क्या है, और फिर दूसरे सेमेस्टर से उनको हिंदी ही
सीखनी पड़ती है।
हाँ जी, सीखनी पड़ती है। तो उसमें सब कुछ आता है, व्याकरण आते हैं, बोलने वाली भाषा, मतलब बातचीत करने के लिए, सुनना, समझना, सब कुछ। और इसी के लिए मैं मूली रूप से, हम टीच योरसेल्फ हिंदी एक जो किताब है, इसका प्रयोग करते हैं। और हमारा एक व्याख्या, मतलब लेक्चरर है श्रीमती रासा सिंह, अभी वो लिथुआनिया में नहीं रहती है, वो चली गई बाहर, शायद यूके में रहती है, लेकिन जब वो विश्वविद्यालय में थी तो उन्होंने एक हिंदी किताब सीखने के लिए, लिथुआनियन को हिंदी सिखाने की किताब लिखी थी। हाँ, जो तो हमारा एक अपनी किताब है, तो हम कंबाइन करके इसको एक साथ करके छात्रों को सिखाते हैं। और अभी क्योंकि सिर्फ व्याकरण सीखने से, जैसे हमारी बात पहले भी हुई थी कि व्याकरण सीखने से कुछ नहीं होता,
कुछ होता
माहौल चाहिए,
माहौल पैदा करना चाहिए।
हाँ, और लिथुआनिया में ये माहौल नहीं है, क्योंकि भारतीय समुदाय बहुत छोटा सा है। हाँ। अभी शायद बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इसी साल में ही, मतलब पिछले साल में, अभी तो 24 है, 2023 में भारतीय दूतावास स्थापित हुआ था। तो इसका मतलब कि अभी शायद हिंदी में और भारतीय संस्कृति, जो मतलब संस्कृति में थोड़ा बढ़ावा ना, सिखाने में भी, कुछ
भारतीय लोग भी आएंगे वहाँ,
भारतीय लोग भी आएंगे, तो उसके लिए भी शायद कुछ व्यवस्था होगी। तो मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ कि इससे थोड़ा सा जो अभी स्थिति है थोड़ा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी कम है, छात्र भी कम है, लेकिन जो आते हैं, अगर कम भी छात्र आते, जो आते तो बहुत खुशी से सीखते हैं, उनको बहुत रुचि, मतलब बहुत रुचि रहती है उसमें, हिंदी में। और एक हमारा छात्र है जो अभी DU में, नई दिल्ली में हिंदी में MA कर रहा है, और उसकी खास रुचि है अनुवाद करने में। तो मुझे बहुत, मतलब साहित्य में और अनुवाद करने में मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। और पहले से जो एक छात्र थी श्रीमती गाबी वो सिलूते, वो अभी पढ़ा रही है, इसका मतलब कि थोड़ा सा स्कोप तो है
कुछ प्रगति हुई है,
प्रगति
इसका मतलब है आपके जो छात्र थे वे पढ़ रहे हैं और अब सिखा भी रहे हैं,
और उम्मीद है कि आगे से और विकास हो जाएगा,
और प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्यों नहीं। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए कि होगा,
जरूर होगा,
जरूर होगा।
और अभी अभी तो मतलब कुछ लोग भी है जो सीखते हैं, फिर उसके बाद उनको नौकरी मिलती है, या तो टूरिस्ट कंपनी में, या कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी, जिसमें हिंदी की जरूरत
होती है। और आजकल तो पर्यटकों के का देश है, तो टूरिस्ट आते जाते रहते हैं,
जाते हैं,
तो एक अलग सी भाषा, एक दूसरी भाषा सीखना अनिवार्य हो जाता है।
जरूर।
और काम, नौकरी भी मिलती है इससे।
हाँ, वो तो है, लेकिन मतलब उसका जो संख्या है, एडमिट करना है कि कम है,
लेकिन जैसे मैंने सीमित है,
फिर भी ये बताते हुए फिर भी विश्वास है कि वो बढ़ जाएगा,
बढ़ेगी बिल्कुल।
मैंने मतलब शिक्षण के दौरान जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ाने में जो सबसे ज़रूरत है, तो देवनागरी सीखे उनको कुछ चीज़ें, मतलब छात्रों को कुछ चीज़ें बहुत कठिन लग रहे हैं, तो उनमें से मैं क्या, सबसे पहले तो जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में हिंदी की तरफ नहीं होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और
क्रिया होती है
ना, तो हमारे पास अलग अलग होता है, तो ये समझना है एक बहुत मतलब बहुत ज़रूरत चीज़ है, छात्रों को समझाना है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखा कि बहुत अलग भी है, तो जो क्रिया का अलग अलग रूप है, हिंदी में बहुत है, पार्टिसिपल्स भी है, कृदान भी है, और वो जो पैसिव टेंस ज्यादा यूजेज, मतलब
प्रयोग करते हैं,
ज्यादा प्रयोग हो जाता है, तो उसको मतलब समझाना छात्रों को बहुत जरूरी है, ताकि उनको व्याकरण भी
सीख सके,
आराम से सीख सके और फिर बात भी कर सके
बोल चाल की भाषा भी हो जाएगी।
हाँ जी, हाँ, लेकिन माहौल बनाना, माहौल
पैदा करना चाहिए, ताकि बच्चे, सभी विद्यार्थी रुचि लें और पढ़ें अच्छी तरह से। दूसरा प्रश्न है मेरा, शिक्षार्थियों को द्वितीय भाषा हिंदी से परिचित कराने की श्रेष्ठ प्रणालियों को उजागर कीजिए। आपकी क्या श्रेष्ठ प्रणाली है, क्या कैसे आप उन्हें द्वितीय भाषा के रूप में छात्रों को परिचित कराती है?
तो ये बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे बहुत दिलचस्पी है साहित्य में, तो मेरी मान्यता है कि अनुवाद करते हुए और साहित्य को पढ़ते हुए ही भाषा का आगे में मतलब ज़्यादा सीख सकते हैं। शुरू में तो जो भी कुछ मतलब छात्रों को सिखाते, तो एक किताब लेके संवाद, डायलॉग्स, कुछ
यूट्यूब कहानी,
छोटी सी कहानी,
या
अपने को कुछ बात करने का, या कुछ प्रस्तुतियाँ छोटी सी करनी होती है, फिर फिल्मों को, बॉलीवुड के फिल्मों को देख के
डायलॉग बोलना,
हाँ, इसके बारे में चर्चा करना, मतलब अच्छा भी होता है ना, तो ये सब कुछ हम प्रयोग करते हैं, जरूर
बिल्कुल,
लेकिन आगे चल के थोड़ा सा, क्योंकि छात्रों को तो अलग अलग हिंदी भाषा की शैलियों से ही परिचित करना होता है ना, क्योंकि एक तो मीडिया शैली है, उनको भी कुछ आर्टिकल्स देखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, फिर फिल्मों की भाषा है, है ना, बोलचाल की, बाजार की हिंदी भी तो एक अलग शैली है,
हाँ भाषा है, गाने भी है, हिंदी के गाने आते हैं, कई कई प्रकार के गाने आते हैं, कई प्रकार के डायलॉग आते हैं, संवाद आते हैं। यदि छात्र सुने तो हो सकता है धीरे धीरे ग्रहण करके बोल भी सकेंगे। तो आप यह हिंदी का माहौल कैसे पैदा करती हैं अपनी कक्षा में?
वही मतलब कम से कम कुछ प्रोग्राम्स भी है इन, मतलब वर्चुअल सीखने के लिए, तो मैं ज़्यादा ही ज़्यादा सुनाने, मतलब कोई डायलॉग्स भी होते हैं यूट्यूब से कुछ, मतलब जितना मैं मतलब उनको हिंदी सुनने के लिए मतलब प्रस्तुत करूँ उतना ही मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि पढ़ना तो उनको वैसे ही तो हम अगर कोई कहानी भी पढ़ते हैं, अगर उसकी उसका अनुवाद भी करते हैं, तो कोशिश मैं करती हूँ कि कोई नाटक हो या कोई फिल्म हो,
बिल्कुल,
जो मैं उनको दिखा सकती हूँ ना, ना सिर्फ पढ़ना
नहीं सिर्फ
लेकिन सुनना भी,
सुनना और देखना देखकर सुनना,
फिर और जितना चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में उतना ही अच्छा
है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे 4-5 साल की उम्र से ही हिंदी सीखने लग जाते हैं। जब पाठशाला में जाते हैं पहली कक्षा से ही हम माहौल बना देते हैं कक्षा में, 50 मिनट की हिंदी सिखाई जाती है, तो बच्चे सुनने लगते हैं, सीखने लगते हैं, शब्द उन्हें आ जाते हैं। फिर घर पर भी टीवी है, रेडियो है, गीत है,
परिवार भी
कभी
है,
कभी परिवार में दादा दादी भी हिंदी बोलते हैं, तो बच्चे इतने अनभिज्ञ नहीं है, इतने दूर नहीं है हिंदी से, वे सीखते हैं, एक एक शब्द तो आता है उन्हें।
हमारे पास मतलब थोड़ा अलग है,
हिंदी
बोलने वालों की संख्या
कम है बहुत,
इसलिए मैं भी मतलब अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कक्षा में आके सिर्फ हिंदी का प्रयोग करूँ, ये तो मेरी साइड से हो जाता है, लेकिन मैं छात्रों को बोलती हूँ कि आप कोशिश कर लीजिएगा कोई दोस्ती बनाने में, या तो इंटरनेट
के दौरान
या जैसे भी कोई इंडियन रहता है या कोई, मतलब कि थोड़ा सा बात हो जाए
हिंदी में,
क्योंकि इसके बिना बहुत मुश्किल है, सिर्फ वो थियोरेटिकल हो जाता है।
लेकिन आपने कहा कि आप अपनी कक्षा में केवल हिंदी बोलती है, बोलने की कोशिश करती है, जब हिंदी बोलते हैं तो क्या छात्र समझ पाते हैं?
समझ पाते नहीं तो, लेकिन मैं इसलिए मतलब वो सबसे पहले तो वो आते, उन जैसे मैंने बताया वो संस्कृत पढ़ के आते हैं एक सेमेस्टर, तो उनकी पहचान है लिपियों से, देवनागरी स्क्रिप्ट से, और कुछ कुछ शब्द भी उनके संस्कृत के पढ़ते समय आने लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, फिर अगर वो पकड़ लेते नहीं तो मैं समझाती हूँ या कुछ दिखाती हूँ, दो बहुत बार करती हूँ, जैसे मेज़ है दिखाती हूँ, तो इसी तरह
वो देख कर समझ लेती हैं। तो डॉक्टर क्रिस्टीना दुलिनिया जी, आपके इन लाभदायक एवं रोचक विचारों को सुनने का मौका मिला मुझे, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आशा है कि इन विषयों पर हम कभी फिर से चर्चा करेंगे।
जरूर,
मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बातें की। वहाँ के लिथुआनिया के बारे में मैंने सुना कि वहाँ पर हिंदी की परिस्थिति कैसी है। अब अभी बहुत लोगों से मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, हिंदी की परिस्थिति कहाँ पर है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
इस मौके के लिए धन्यवाद,
बहुत धन्यवाद। नमस्ते, हम फिर मिलेंगे।
नमस्कार जी।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर।